તારીખ 31/12/1991 શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 120 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 92
હુઆ કૈસે હુઆ ઉનકે ખ્યાલ મેં તો સબ બાત આતી હૈ મહાપુરુષ કે તો નજર મેં સબ બાત રહેતી હૈ મોક્ષ કહાં ભૂલ કરતા હૈ કિસ તરહ સે ભૂલ કરતા હૈ लेकिन जैसी योग्यता होती है ऐसा अपने अभिप्राय के अनुकूल गुरुदेव की प्रवृत्ति का अर्थ घटन कर लेते
एक भाव भाषण पछी लगभग उपसंहार ना विषय में छे एमा पहला बोध बीज नो विषय हमने लीधो छे बोध बीज में भाषण भाव भाषण लीधो छे भाष्य निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप અગર અમર અવિનાશી ને દેહાતીત સ્વરૂપ એને બોધબીજ પ્રગટ થયું એને પોતાનું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પોતા સ્વરૂપે ભાષ્યમાન થયું કે જે અગર અમર અવિનાશી અને દેહાતીત સ્વરૂપે છે એવું પોતાને ભાષ્યમાન થયું આ સ્વરૂપ નિશ્ચયનો વિષય છે 120 કાથા જે સંકેતનું કારણ દીધું છે એવું સ્વરૂપ ભાષે અને પ્રત્યક્ષ અંશે ભાષે એટલે પરોક્ષતા નો અભાવ થવાનું બળ ઉત્પન્ન જ્યાં જ્યાં અધ્યાત્મનો વિષય ચાલ્યો છે અને પુરુષાર્થનો વિષય ચાલ્યો છે કેમ કે આત્માનો આશ્રય કરતા પુરુષાર્થ દ્વારા સ્વરૂપ આશ્રય કરતા અધ્યાત્મ દશા પ્રગટે છે ને ત્યાં બધા જ આગમમાં અથવા સમસ્ત જ્ઞાની પુરુષોના અનુભવી પુરુષોના વચનોમાં આત્માની પ્રત્યક્ષતાનો વિષય અવશ્ય અવશ્ય આવે છે કેમ કે એ એક જ આત્માની એવી વિશેષતા છે પ્રત્યક્ષતા છે એ એક જ આત્માની એવી વિશેષતા છે કે જેનાથી જે પુરુષાર્થ છે એના પરિણામની અંદર તીવ્રતા આવે છે ઉછાળો આવે છે વ્યવહારિક જીવનમાં પણ એ વાત અનેક પ્રસંગોએ અનુભવ ગોચર થાય છે જેમ કે બે જણ વચ્ચે સ્નેહ હોય છે રાગ હોય છે પણ પ્રત્યક્ષ મળે છે ત્યારે ખૂબ આનંદ થાય છે ખૂબ ખુશી થાય છે એનું કારણ દૂર હોય છે ત્યારે પણ રાગ તો રાગ જ છે પ્રેમ તો પ્રેમ છે સ્નેહ તો સ્નેહ છે પણ મળે જ્યાં પ્રત્યક્ષ મળે એટલે એકદમ તારતમ્યતા વધી જાય છે એ પરિણામોને એ જ સ્નેહના પ્રેમના પરિણામોની તારતમ્યતા વધી જાય છે એવી જ રીતે અસાધારણ પ્રસંગોમાં પણ એવું જ છે કે કોઈના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળો ને પ્રત્યક્ષ મૃત્યુ જુઓ તો પરિણામ ઉપર એકદમ અસર આવે છે પ્રત્યક્ષતાની અસર છે એ ઘણી તીવ્ર હોય છે પરોક્ષતાની અસર એટલી તીવ્ર નથી હોતી મતલબ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તીવ્ર પુરુષાર્થ અને તીવ્ર રસનું ઉત્પાદક છે એ અનુભવ સિદ્ધ છે આપણે આ ક્રિકેટનું દ્રષ્ટાંત આપીએ છીએ કે ભલે 4-6-8 કેમેરા ગોઠવા હોય ને બધા એંગલથી એ ચીજ દેખાડે સ્ક્રીન ઉપર અને જો સ્ટેડિયમમાં બેસો બેઠો જોવે છે એક જ સાઈડથી એક જ દિશામાંથી ઉસકો દિખતા હૈ ફિર ભી વો ટાઈમ खर्च का खर्चा कर करके प्रत्यक्ष क्यों देखने को चाहता है कि रस उसमें आता है उतना रस उसमें नहीं आता है। रस वृद्धि का निमित्त जो प्रत्यक्षपणा है एक बहुत प्रयोग सिद्ध हकीकत है। ये भाव भाषण में कोई महत्वपूर्ण विषय है तो ये है। विचार से जो निश्चय स्वरूप निश्चय होता है उसको भावभाषण इसलिए नहीं कहते हैं तो वो निश्चय में सभी बात परोक्ष है, प्रत्यक्षता का कोई उसमें विषय नहीं आता। वेदन प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति लिधि। गुरुदेव तो इस विषय को 144 गाथा के प्रवचन में यहाँ तक कहते हैं कि अंश राग का अभाव करके ये भाषण होता है, निश्चय होता है अंश राग का अभाव करके। अंश राग का अभाव क्यों किया? सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, ये तो स्वरूप निश्चय हुआ है। तो राग सो में उसका अभाव किया, कितना? कुछ अंश में किया। कि ऐसा जो वेदन गोचर होता है वैसा प्रत्यक्ष आत्मा सो में, ऐसा प्रत्यक्ष अंश से अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप में अपनापन, मेरा स्वरूप, अपना स्वरूप लगता है। अनुभव नहीं होता है, लगता है, उतना फर्क है। वो लगता है उसमें आंशिक अभाव ले लिया। मान लगने का हो सकता है इस विकल्प से, वहां मैंपना जो है, अपनापन है, वो कुछ अंश में स्वरूप की सन्मुख होकर के कुछ अंश में नास्तिकों को लिया कि अस्तित्व में स्वरूप सन्मुखता आई इसलिए नास्ति लिया। गुरुदेव ने नास्ति यहाँ क्यों लिया? ये प्रवचन भी बहुत पुराने हैं, 1998 के साल के हैं। मैंने 50 साल पहले के, आज से ये पड़ताली चल रहा है, 50 साल पहले का प्रवचन जो बेंसरे ने लिखा हुआ है उसमें वो बात है। वो बात पकड़ी थी भी ग्रंथ में, वो बात आई है। तो ये एक भाव भाषण के जो विशिष्ट परिस्थिति इसलिए गई कि ये सम्यक दर्शन का कारण है। कारण होने से कार्य का उपचार करके उसको संकेत कह सकते हैं, उसको बोध बीज कह सकते हैं। बीज इसलिए, बोध बीज को इसलिए नाम दिया कि वहां संस्कार डल जाता है। मानो किसी का आयु पूर्ण हो गया, भाव भाषण होवे और बाद में सम्यक दर्शन और स्वानुभव होवे, इस पहले बीच में ही किसी का आयु पूर्ण हो गया। तो ये जो बोध बीज बो दिया, बीज का बोध का बीज बो दिया, उसका अंकुर आगे जा करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में प्रकट होने वाला है।
प्रतीति को अनुभव का अंश मानते हैं, अनुभवांश प्रतीति। उस प्रतीति में अनुभव के मेल खाता भाव है, अनुभव का अंश है।
स्पष्ट अनुभव परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, इतना शब्द पड़ा है। हाँ, शब्दशः पढ़ता हूँ। पहला परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति वह संकित का दूसरा प्रकार कहा है। इतना शंक पड़ा। तो परमार्थ मैंने मूल स्वभाव परम तत्व परम परिणामी भाव को या एक स्वभाव को उसकी स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति प्रतीति मैंने वहां वो समग्र दर्शन वाली प्रतीति नहीं है लेकिन विश्वास आता है कि ऐसा मैं हूं। विश्वास जम गया। क्यों जम गया? कि प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष अंश से प्रत्यक्षता क्या है? स्वरूप में अनंत प्रत्यक्षता क्या है? जैसे केवल ज्ञान अनंत प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, वो तो भीतर में थी, वो प्रकट हुई, स्वभाव में थी, सामर्थ्य रूप से वो प्रकट हुई, वो देखने में वहां आ जाती है। जैसे क्या कहते हैं कि चैतन्य सूर्य है, तो इतनी जितना ज्ञान है उतनी ही प्रत्यक्षता है। अनंत ज्ञान है तो प्रत्यक्षता भी अनंत है और उसकी मौजूदगी उसका अस्तित्व ग्रहण हो जाता है तो मैं ऐसा हूं। तो वो इतनी प्रतीति जिन विश्वास आता है प्रत्यक्ष अंश द्वारा विश्वास आता है तो वो संकेत का मूल कारण होने से अनन्य कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके उसको संकेत कर दिया। और मैंने किया है उतनी बात नहीं लिया है। उन्होंने तो ये कहा कि ये तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किया है। मैंने जिनेश्वर देव ने भी इसको सम्मत किया है और तीनों संकेत उपासने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। और उपासना नहीं किया तो सत्कार तो करने योग्य है, निषेध करने योग्य नहीं है। ये बात इसमें आ गई। और तीनों संकेत भक्ति करने योग्य है। इतने सही कपड़े हैं। जैसे हम हमारे घर में किसी एक आदमी को छिपा हुआ देख लेते हैं, पूरा नहीं देखते, या तो उसका हाथ की अंगुली दिख गई या पैर की अंगुली दिख गई, कुछ और नहीं दिखा, क्योंकि छिपा छिप गया है किसी हमारे दरवाजे के पीछे या कोई कबाड़ के पीछे, कहीं भी सामान के पीछे घुस गया हुआ आदमी चुपके से, पर हमने उसके कोई अंगुली दिख दी या पैर के अंगले दिख दिया तो वो प्रत्यक्ष अंश दिखा। क्या दिखा? एक अंश को प्रत्यक्ष दिखा। और एक अंश को प्रत्यक्ष दिखने से पूरा आदमी का ख्याल आ गया कि अंगुली नहीं है, कोई आदमी है इधर। कौन है हमारे घर में छिपा हुआ आदमी? कौन है? कैसे घुस गया? कब घुस गया? कैसे आ गया? क्यों आ गया? इतना विचार करना जरूर नहीं पड़ता है। इसका टोटल है पूरा परिणाम में अभेद रूप से आ जाता है। कुछ हो रहा है तो एक सेकंड भी इसकी उपेक्षा करने वाला नहीं। फिर देखेंगे बाद में, चलो देख तो लिया ने, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, नहीं। एक सेकंड भी इसकी उपेक्षा होने वाली नहीं है। तो चोर को देखने में एक सेकंड उपेक्षा नहीं हो गए, पर सिद्ध भगवान को देखे तो उपेक्षा हो गए। कितने कब हो गए? ये प्रत्यक्ष रूप में अपना सिद्ध पद दिखता है, मूर्ति पूरी की पूरी, देहातीत स्वरूप। ये जो लिया ने देहातीत स्वरूप, तो सिद्ध भगवान देहातीत होते हैं, देह से अतीत हो, बस पूरी मूर्ति देह में देहातीत रूप से दिखना, इसकी उपेक्षा होना।
जब भी वेदन प्रत्यक्ष होता है आंशिक भी होता है क्या? तारतम्य अंतर अनिल रूप स्वभाव का अंश कैसे होता है?
आप अनुभवांश है, अनुभव का अंश है, स्वभाव का अंश नहीं है। स्वभाव तो पूरा नजर में आया, क्या स्वभाव तो पूरा भाषमान हुआ है। और जब अनुभव होगा स्वानुभव शुद्धोपयोग में, तब ऐसा मालूम पड़ेगा कि जैसा मेरे भाषण में आया था वैसा अनुभव में आया, कोई फर्क नहीं। उसमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ था, भाषमानपणा हुआ था, अभी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। लेकिन दोनों ज्ञान में अंतर है, ज्ञान के विषय में कुछ अंतर नहीं है। जो अंतर है वो विषय में है, विषय में नहीं। तो विषय में तो अंतर होता ही है, भाषमानपणा, फिर सम्यक दर्शन में तारतम्यता है, फिर आगे के गुण स्थान में सभी में तारतम्य विशेष तो बढ़ती जाती है। और केवल ज्ञान में अनंत
है,
जाति भी एक सी है, जाति भी एक सी है, वहां से जाति बदली, भाष्यमान हुआ वहां से जाति बदल गई। वो प्रश्न चला था गुरुदेव के साथ, ये प्रश्न चला था कि श्रद्धान की क्या स्थिति है। ऐसा मेरा सीधा प्रश्न ये था गुरुदेव से कि अभी श्रद्धान की क्या हालत है, भाषमानपना तो हो गया सर, तो श्रद्धान मिथ्या है लेकिन मंद है। क्या श्रद्धान मिथ्या है लेकिन मंद है? तो फिर मैंने पूछा कि क्या ज्ञान जात्यांतर हुआ क्या? तो कहा हाँ, ज्ञान जात्यांतर हुआ है, क्योंकि सन्मुख हुआ है इसलिए। फिर उतना सूचना थी कि ये सूक्ष्म विषय है, ज्ञान जात्यांतर यहाँ से होता है, लेकिन प्रधानतया मुख्यतया ऐसा बोलने में नहीं आता। अनुभव होने से ही जात्यांतर ज्ञान हुआ ऐसा बोलने में आता है, क्योंकि वहां से सम्यक विशेषण लगता है।
जात्यांतर होने लगता है, जात्यांतर हो गया, दो बात मानता
है। मैंने सम्यक का प्रोसेस तो आप कह सकते हैं, लेकिन सन्मुखता आई है वो बात जरूर है। मैंने दिशा बदली है पुरुषार्थ ने भी और ज्ञान ने भी, दिशा बदली है अवश्य, उसको सन्मुखता कहते हैं, उसको अंतर्मुखता। ये बात स्थापित करनी है, उतनी बात स्थापित करनी है कि प्रत्यक्ष अंश से, प्रत्यक्ष तौर से अपना स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान में आया, ज्ञान में आया तो ज्ञान सन्मुख हुआ, नहीं ज्ञान में आया है। ज्ञान उन्मुख रहा और ज्ञान में आया है, सो बात नहीं है। ज्ञान अभिमुख हुआ है और ज्ञान में आया है, तो ये दिशा बदली है। और पुरुषार्थ भी यहाँ से जो चालू हुआ वो भी स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ है, जो वृद्धिगत होकर के एक स्टेज में विकल्प का अभाव होकर के निर्विकल्प अनुभव हुआ।
जो
विशेष है
कोई
ऐसा जो मूल स्वरूप है वो तो कुटस्थ है, ध्रुव है, वो ऐसा ही भाष्यमान होता है, जैसा है वैसा ही भाष्यमान होता है।
जानने वाली जो परिणाम क्रिया हो रही है समय समय पर, वो मेरे नहीं ऐसा पकड़ता है?
नहीं, वो वहाँ ऐसा विकल्प नहीं है, वहाँ वैसा विकल्प नहीं है।
लेकिन नजर,
हाँ नजर है त्रिकाली पर, त्रिकाली पर जाती है,
नजर नहीं है।
नहीं, नजर नहीं है, लेकिन चैनल यहाँ से है। क्या
ये
पकड़ने में यहाँ से आएगा। प्रगट वेदन से वो अप्रगट स्वभाव पकड़ने में आएगा।
वो प्रकट करने वाला
भले ही पर्याय हो, लेकिन
नजर किधर
है वो? नहीं, गिनती नहीं करता। गिनती करे तो श्वसन मुक्ता नहीं रहेगा, तो श्वसन मुक्ता नहीं। गिनती का सवाल ही नहीं। यहाँ तो शुरू से ये बात है कि पर्याय दृष्टि तो छोड़नी है, तोड़नी, ये बात शुरू से है। तो गिनती होने में दृष्टि नहीं छूटेगी, जिसको पर्याय दृष्टि भी छूटी नहीं और वो गिनती भी करे तो पर्याय दृष्टि मजबूत होती है, छूटती नहीं है।
प्रयत्न विफल चले जाते हैं,
वो प्रयत्न गलत है। गिनती हो गए तो मिथ्यात्व तीव्र होता है। पर्याय की गिनती में मिथ्यात्व है वो तीव्र होता है, उल्टा नुकसान होता है। विफल क्या नुकसान? विपर्यास चालू हो गया वहां, तो वहां तो विपर्यास चालू हो गया। ये बात है। हाँ, ये मुख्य थी जैसे ना, मतलब आखो त्रिकाण स्वभाव मुख्य थी, કેમ કે ટુકડો નથી, સળંગ છે, એટલે બોલો જો અંગૂઠો જોયો તો આખો માણસ જોયો, કેમ કે અંગૂઠો કઈ ટુકડો નતો, માણસ નો જ અંગૂઠો છે એમ જોયો, હા, એટલે અંગૂઠા ઉપર ધ્યાન નથી, માણસ ઉપર ધ્યાન ગયો સીધું, શું અંગૂઠો નથી જોયો અને માણસ જોયો છે। દૂસરા દ્રષ્ટાંત લે કે કિસી દરિદ્ર આદમી કો જો આજન્મ દરિદ્ર હૈ, બહુ દરિદ્ર હૈ, रोटी का टुकड़ा भी के लिए दीनता करनी पड़ती है। ऐसा देखो, ऐसे आदमी के अपनी झोपड़ी जैसा मकान हो तो उसके जो कमरा है उस कमरा में कोई निधान पड़ा है, डटाया हुआ, अरे किसी ने बोला कि तुम क्यों दरिद्र है, तेरे घर में तो बहुत है, तो नजर नहीं आता कि कोई बात नहीं, तुम तो मेरे कमरे में बराबर बीच में से थोड़ा भी अपना जो फ्लोरिंग है, जमीन है, उसमें से थोड़ा निकालो, 6 इंच अंदर देखना है, ज्यादा भीतर नहीं जाना है, बहुत भरा है, इतना भरा है कि इसकी इतनी संपत्ति किसके पास नहीं है। अच्छा, वो बात है, रात हो, शुद्र तो करने वाला नहीं है, रात हो या दिन हो वो तो कमरा बंद करके करेगा काम, हाँ, खुला ही नहीं रखेगा, इतनी सावधानी है। अच्छा, अभी उसने देखा एक बड़ा बर्तन, तो बड़ा नहीं देखा, 6 इंच में कितना दिखेगा कि उसका जो सरकमफेरेंस है, माने कि गोल बर्तन है, उसका कुछ एक अंश दिखेगा, इस अंश से पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है क्या। हाँ, कटोरी होती है, इसकी गोलाई जो होती है, इसका अंश दिखता है, और एक बहुत बड़ा बर्तन है 8-10 फीट का डायमीटर हो, उसकी जो गोलाई होती है उसमें अंतर कितना, बहुत बड़ा अंतर है, ये तो बहुत, तो सोना से हीरे से भरे हुआ है पूरा। क्या देखा, सैंपल से पूरी चीज दिखने में आती है। ये मति शुद्ध ज्ञान का सामर्थ्य है इतना है कि एक अंश से पूरा अंश को ग्रहण कर लेना, ये मति शुद्ध ज्ञान का सामर्थ्य है। ऐसे एक अंश से पूरा अंश ही नजर में आता है, अंश पर नजर नहीं रहती है, लेकिन चैनल वो अंश है, माध्यम वो है, बिना चैनल आप जा नहीं सकते वहां। तो क्या है कि कोई त्रिकाली त्रिकाली करता है तो चैनल को भूलता है, कोई चैनल को पकड़ता है तो त्रिकाली को भूलता है, ये गड़बड़ होती है, ये नहीं होने। करमचंद जी, अंश से अंश पर जाया जाता है, नित्य से अनित्य से नित्य मिलता है, सीधा नित्य नहीं मिलता है। यही अनित्य का महत्व है अपने स्थान में, उतना नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाए। तो फिर त्रिकाली त्रिकाली का विकल्प करता रहेगा, ध्रुव 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 करते रहेगा, चीज का पता नहीं लगेगा। नहीं आवे जैसे हम शक्कर लेने को जाता है, शक्कर की बोरी पूरी लेनी है और हम उसके गोडाउन में गए, सैकड़ों बोरी पड़ी है, तो हम पहले 10 बोरी में से सैंपल निकालते हैं। तो सैंपल तो एक तोला जितना आता है, 10 तोला सैंपल निकाला एक बड़ी ट्रे में, अब हम कहते हैं कि ये पांचवी बोरी अच्छी है, क्या बोलेंगे? इधर बोरी है क्या, ट्रे में बोरी है क्या? हमारा उपयोग ट्रे में सैंपल पड़ा है इस पर है, और लक्ष्य कहाँ जाता है? लक्ष्य जाता है बोरी पे। एक साथ दो काम हुआ कि नहीं हुआ? देखा सैंपल और लक्ष्य में बोरी आई, ऐसा देखा वेदन प्रत्यक्ष रूप से और लक्ष्य हो गया त्रिकाली का, बस। अब प्रैक्टिकल साइड के रूप में बात है, ये भाव आसन है, ये स्वरूप निश्चय है, ये संकेत का दूसरा प्रकार है जो सत्कार करने योग्य है, भक्ति करने योग्य है, वितरागों ने कहा है, ये सब बात लिया। उपयोग थाय छे, परिणति तीव्र थती जाय छे, પછી શું થાય છે? પરિણતિ જાણતી જાય છે, બીજું શું થાય છે કે ઉપયોગ ઉદય મેં જાતા હૈ, વહાં સે છિટકતા હૈ બાર બાર, અરે મેં તો યે હું ને, મેં તો સિદ્ધ હું ને। જબ ઉપયોગ બહાર જાતા હૈ તો મનુષ્યોચિત પ્રવૃત્તિ કરેગા, મનુષ્ય જીવ હૈ વો, મનુષ્ય પર્યાય વાલા। તો અભી તક તો અપને કો મનુષ્ય હી મહેસૂસ કરતા થા, ઉસમે વો ફટકા લગતા હૈ, અરે મેં તો યે હું ને, ये नहीं मैं, ये नहीं। फिर तो जितना भी पर्याय आश्रित जितना भी भाव आता है उसका निषेध आने लगता है, बार बार उसका निषेध जोर जोर से आने लगता है, बस ये प्रोसेस चालू हो गया, ये प्रोसेस चालू हो गया। अपसिद्ध पद, अखंड सिद्ध पद, पूरा पूरा स्वभाव, एक भूत को देख ले मैंने तो भूले नहीं भय से है, भूत को नहीं देखे, भूत का आभास हो जावे तो भूले नहीं। भगवान को देखे वो कैसे भूलेगा, और जीवंत क्या मूर्ति, जीवंत मूर्ति, सजीवन मूर्ति है वो भूलने वाला नहीं, और खुद वो भी खुद तो कितना रस आता होगा। कि सारी दुनिया को भूल सकता है, सारी दुनिया को क्या, सातवीं नारकी के वेदना को भूल सकता है, और देवलोक की अनुकूलता को भी भूल सकता है। नारक की प्रतिकूलता को भूलना आसान है, और देवलोक के वैभव की जो आकर्षण है उसको भूलना भी आसान है, सारे जगत को भूलना आसान है उसको, इतनी इतनी बड़ी चीज है, इतनी महान चीज है। विकल्प करता है वो प्रश्न, लेकिन जो प्रत्यक्ष अंश की चैनल द्वारा ज्ञान को वहां भेजता है उसमें स्वसन मुक्ता आती है क्या जिसको प्रत्यक्ष अंश द्वारा क्या लिखा सुमित जी ने कि लक्षण से वेदन से और गुण से जिसको आत्मा का जिसने आत्मा का अनुभव किया वही आत्मज्ञान का स्वरूप है। आत्मज्ञान किसको कहेंगे? लक्षण से वेदन से और गुण से, तीन शब्द लिया है। तो लक्षण में प्रत्यक्ष अंश लिया, वेदन में उसका वेदन वाला लिया, विचार नहीं लिया, और गुण में स्वभाव ले लिया, त्रिका ले, बात खत्म। उन्होंने एक साथ ये तीन बात लिखने में त्रिकाली और त्रिकाली प्रति जाने का चैनल दोनों बात साथ में बता दी एक पंक्ति में, एक वचन में। कितना भी चर्चा करो बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय। यहाँ ये महत्वपूर्ण स्टेज है, ये स्टेज आए बिना संकेत की तो आशा रखना अनुभव की अभाव के अभाव की संभव नहीं
आने की क्रिया होती है। आने की क्रिया करने वाला नहीं, मैं जानने वाला, वो स्टेज छूट गया यार। वो स्टेज भी यहाँ का रहा, शुरुआत में जब वो कर्म करने की कोशिश करता था
उसमें तो फिर तो क्या है कि जो चीज महान है उसकी महानता उतनी है कि इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं, समझो। वो इतनी बड़ी महान चीज है कि इसके आगे फिर कुछ दिखता ही नहीं, समझो। दिखता है तो नहीं दिखे ऐसा ही दिखता है, ऐसे जो कलष्टिका માં કેટલું આવે છે, એક એક કળશ માં લગભગ આવે છે, જ્યાં જ્યાં સ્વાનુભવ ની વાત આવે છે ત્યાં પ્રત્યક્ષ શબ્દ નો રાજમલજી પ્રયોગ કર્યો છે। પ્રત્યક્ષ આસ્વાદ એમ કે છે, આસ્વાદ એટલે વેદન, એકનું વેદન નહી પ્રત્યક્ષ વેદન, એવી રીતે। એટલે વેદન શબ્દ થી કોઈ કલ્પના કરે એવું નહી, પ્રત્યક્ષ વેદન, કે વેદન પરોક્ષ હોતું જ નથી। પણ છતાં સ્પષ્ટ વાત એટલી છે, વિકલ્પ હોય છે, પણ વિકલ્પ બહુ ઘણો ગૌણ થઈ જાય છે ત્યાં। વિકલ્પ સાથે હોય છે એટલા માટે સ્વીકારવું જોઈએ કે નિર્વિકલ્પ શુદ્ધો ઉપયોગ તો થયો જ નથી। જે નિર્વિકલ્પ શુદ્ધો ઉપયોગ થાય છે ત્યાં તો વિકલ્પની ઉત્પત્તિ બંધ થઈ જાય છે, ભલે ક્ષણભર માટે પણ એ સ્થિતિ આવી નથી। ના એટલે લોજિક થી એટલે પરિસ્થિતિ એમ જ છે, કેમકે એને એ અંતર વિચારની ભૂમિકામાં એ પ્રસંગ બને છે, પોતે સ્વરૂપ, હા સ્વરૂપને વિચાર કરતા 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 અંતર વિચારની ભૂમિકામાં એ પ્રસંગ બને છે। અને બેમાં ફરક શું છે કે શુદ્ધો ઉપયોગમાં જે વેદન છે એ પૂરા પ્રદેશમાં છે, પગથી માથા સુધી જે ઇલેક્ટ્રિકનો કરંટ જાય ભલે આંગળી અડી ગઈ હોય અને ઝણઝણાટી આવે એમ આનંદનું વેદન થ્રુ આઉટ છે, જ્યારે અનુભવાંશમાં એ નથી, નહીં અસંખ્ય પ્રદેશથી વેદનથી આવતું। જે જ્ઞાનની અંદર જ્ઞાન સામાન્યમાં જે પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન છે ત્યાંથી આખો ભાષ્યમાન થયો છે, વેદનમાં નથી આવ્યું, ભાષ્યમાન થયો છે।
એમ
મિથ્યાત્મન થઈ જાય તો કસાય તો ક્યાંથી તીવ્ર થાય, મિથ્યા તો અત્યંત મન થઈ જાય છે. મોટો દુશ્મન તો મિથ્યા છે, દર્શનમો છે, ચારિત્રમો કઈ મોટો દુશ્મન નથી. દર્શનમો જ મોટો દુશ્મન છે, દર્શનમો ઉપર ઘા માર્યો ત્યાં તો દર્શનમોની તાકાત તૂટી ગઈ. ત્યાં ઉપશમને યોગ્ય થઈ ગયો દર્શનમો, એટલે ઉપશમ સમય દર્શન થઈ જશે. ઉપશમને યોગ્ય પરિસ્થિતિ થઈ. વિચાર વિચાર ની જગ્યાએ હોય છે, લક્ષ્ય જાય છે ત્રિકાળી ઉપર.
લક્ષ્યમાં
લક્ષ્યમાં વિચાર નથી, પરિણામમાં વિચાર છે, લક્ષ્યમાં વિચાર નથી. લક્ષ્ય તો જ્ઞાન નો પર્યાય છે, વિકલ્પ તો રાગ નો પર્યાય છે. વિકલ્પમાં રાગ છે, જ્ઞાનમાં રાગ નથી, રાગમાં જ્ઞાન નથી. એ તો ભેદ જ્ઞાન ત્યાં થાય છે, ત્યાં તો ભેદ જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાન ને રાગ જુદા છે એમાં શું જોયું? રાગ અને જ્ઞાન જુદા છે એમ ગુરુદેવ એમાં શું જોયું? કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન સ્વભાવ જોયો, પ્રત્યક્ષ અંશમાં જ્ઞાન સ્વભાવ જોયો પૂરો, એટલે રાગ જુદો જોયો. કેમ કે જાતિ જુદી છે, દુઃખ છે, વિપરીત છે ને મલિન છે. અને આ તો અનંત સુખ ની ખાણ જોઈ, અનંત જ્ઞાન ની ખાણ, અનંત સુખ ની ખાણ. એટલે તો આ દાખલો આપ્યો કે ઉપયોગ ટ્રે ઉપર છે. સાકર નો સેમ્પલ પાંચમી ગુણી બરાબર છે, ના લક્ષ ગયો ત્યાં, ઉપયોગ અહીંયા છે. સેમ્પલ ઉપર ઉપયોગ છે ને લક્ષ ત્યાં ગયો. આ એક જ્ઞાનની પર્યાયમાં બે કાર્ય થાય છે. કે તમે વેપાર કરતા હોય ને તમારું લક્ષ ઘરે હોય, ને તમે અહીંયા સ્વાધ્યાય કરતા હોય ને તમારું લક્ષ દુકાને જાય, જાય કે ન જાય એમ છે. જ્ઞાનની પર્યાયમાં તો સમજવા જેવો વિષય છે, લક્ષ શું ચીજ છે અને ઉપયોગ શું ચીજ છે એ જેને જરાક સમજી લેવા જેવું છે પ્રેક્ટિકલ સાઈડ થી. શું બને છે કે નહીં? એટલે તો સેમ્પલ દાખલો આપ્યો કે ઉપયોગ અહીંયા હોય ને લક્ષ ત્યાં જાય એમ છે. એટલે તો એમ કહ્યું કે અહીંયા લક્ષ બંધાય છે, સ્વરૂપ લક્ષ થયું ત્યાં. લક્ષ એટલા માટે કીધું, પછી એ ચીજ લક્ષ માંથી ખસતી નથી. ઉપયોગ ખસે છે, લક્ષ ખસતું નથી. શું પછી તો ઉપયોગ ઉદયમાં પણ જશે, લક્ષ નહીં ફરે. શું અહીંયા તમે સ્વાધ્યાય કરો છો, ઉપયોગ સ્વાધ્યાયમાં છે ને લક્ષ હોય છે ત્યાં. જ્યાં સાવધાની રાખવાનું હોય ત્યાં લક્ષ હોય છે.
ઘણા બધા સમયો
એ ઉપયોગ જાય છે, એ ઉપયોગ જાય છે. હોય પણ ખરા ને ન પણ હોય. એક બીજો દ્રષ્ટાંત થઈ ગયો. એક માણસ તમારી સાથે ચર્ચા કરવા આવે છે. ચર્ચા નો પ્રસંગ એવો છે કે તમે કઈ જે નક્કી કરી બેઠા છો એ તમારો નિર્ણય એને બદલી નાખવો છે. એટલે તમારું બ્રેઇન વોશ કરવા કોઈ માણસ આવ્યો નહીં. ખ્યાલ રાખજો, દ્રષ્ટાંતમાં તમને ખબર પડી ગઈ કે આ ભાઈ આવ્યા છે મારું બ્રેઇન વોશ કરવા, અને મારે મારું બ્રેઇન વોશ થવા દેવું નથી. બરાબર, હવે તમે એની બધી વાત સાંભળવામાં ઉપયોગ આપશો, પણ તમારું લક્ષ્ય ક્યાં હશે? કે મેં જે નિર્ણય કર્યો છે એમાં ફેરફાર મારે નથી કરવાનો. બરાબર, તો લક્ષ્ય ત્યાં જ રહેશે. ભલે અડધી કલાક વાત સાંભળો, એની કલાક વાત સાંભળો, ગમે એટલી લાંબી વાત સાંભળો, ગમે એટલી દલીલ સાંભળો, તમે તમારો લક્ષમાં મજબૂત રહી જશો. તમે લક્ષમાં એક વાત નક્કી કરી છે કે આ તો છોડવાનું જ નથી, કેમ કે સિદ્ધાંતિક વિષય છે, હું સિદ્ધાંતમાં નહીં બદલું, સિદ્ધાંતમાં ફેરફાર નહીં થાય, સિદ્ધાંતમાં બાંધછોડ નહીં થાય. ચાલો ફેરફાર નહીં, બાંધછોડ નહીં થાય. પછી પેલો માણસ સિદ્ધાંત છોડવા માટે ઘણી દલીલો આપે, શું થશે? ઉપયોગીની વાત સમજવામાં જશે. તમારું લક્ષ્ય છે એટલે તમે કહેશો કે આમાં સિદ્ધાંત તૂટે છે. તમને ક્યાં ખબર પડી સિદ્ધાંત તૂટે છે? કેમ કે તમારું લક્ષ્ય બરાબર છે, ત્યાં છૂટ્યું નથી. માટે વેપારી હે ને આપતા, વેપારી હે તો લક્ષ્ય તુમ્હારા પૈસા કમાને કમાને મેં હે. અબ કોઈ ગ્રાહક આયા તુમ ઉસકે પીછે કુછ ખર્ચ કરતે હો, ચાલો આપકો હૈદરાબાદ કા મ્યુઝિયમ દિખા દું, વો દિખા દું, વો દિખા દું, તુમકો મોતી કી માલા પહેના દું, ક્યા મોતી મિલતા હૈ ને, તો ક્યા કરતે હો, ખર્ચ કરતે હો ક્યા? નહીં, ઉપયોગ તો ખર્ચ કરને મેં, લક્ષ કમાને મેં. વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ કે નહીં? વિરુદ્ધ ઉપયોગ કામ કરતા હૈ ફિર ભી લક્ષ નહીં બદલતા. એસે ઉપયોગ વિભાવ મેં જાતા હૈ, ઉદ્યોગ મેં જાતા હૈ, લક્ષ નહીં બદલતા, ઉસકા નામ લક્ષ હૈ. શ્રદ્ધાજી મિથ્યા છે, આયા શ્રદ્ધાજી મિથ્યા છે, પણ લક્ષ નથી બદલતો. ઉપયોગ રૂપ જ્ઞાન બદલે છે, લક્ષ રૂપ જ્ઞાન નથી બદલતું. એમ છે કે શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પ છે અને જ્ઞાન સ્વવિકલ્પ છે. શ્રદ્ધા છે એ નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ રૂપ છે, જ્ઞાન સ્વવિકલ્પ છે. લક્ષ નો વિષય જેવો છે એવો બરાબર જ્ઞાનમાં છે. દ્રષ્ટિનો, પણ અહીંયા ભાવભાષણમાં પણ દ્રષ્ટિનો વિષય છે, નિશ્ચયનો વિષય પણ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એટલે દ્રષ્ટિનો વિષય છે, દ્રષ્ટિમાં પણ આવે છે, જ્ઞાનમાં પણ આવે છે. પ્રતીતિ નિર્વિકલ્પ હોતી હૈ, શ્રદ્ધા મેં ભેદ નહીં પડતા. ભેદ એટલે અભેદ મેં ભેદ ગર્ભિત હૈ. જ્ઞાન કા ભી દો પ્રકાર, ભેદ વાલા ઓર અભેદ વાલા, લેકિન અભેદ મેં ભેદ ગર્ભિત હૈ. જૈસે હમ દેખે કેસે દ્રષ્ટાંત દેંગે કે ગુરુદેવ આ રહે હૈ, તો ગુરુદેવ કા જ્ઞાન અભેદ રૂપ સે હુઆ કે નહીં? એક શબ્દ મેં પૂરા ગુરુદેવ કા જ્ઞાન હો ગયા, તો ઉસમેં ગુરુદેવ જૈસે હૈ ઉસકા સબ ભેદ આ ગયા કે નહીં આ ગયા? અભેદ જ્ઞાન મેં ભેદ ગર્ભિત હૈ. જૈસે સોના હૈ, સોના તો એક શબ્દ હૈ, લેકિન સોના કા કા ક્યા મૂલ્ય હૈ? વો ચીજ જ્ઞાન મેં, અભેદ જ્ઞાન મેં ભેદરૂપ હૈ, ભેદ શામિલ હૈ. લેકિન જ્ઞાન મેં ઓર શ્રદ્ધાન મેં ફરક હૈ, વો ફરક હૈ કે જ્ઞાન મેં અભેદ જ્ઞાન મેં ભેદ ક્યા હૈ વો પતા હૈ, શ્રદ્ધા મેં વો કોઈ બાત નહીં હૈ, લંબી છોડી કોઈ તો નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા પ્રતીતિ રૂપ મેં હૈ. એસા હી હું વો પ્રતીતિ કા વિષય હૈ, એસા વો જ્ઞાન કા વિષય હૈ, એસા હી હું વો પ્રતીતિ કા વિષય હૈ. દો ભાવ મેં ફરક હૈ, ઇસલિયે જ્ઞાન પૂર્વક શ્રદ્ધા ના હોતી હૈ. નિર્વિકાર નહીં પણ નિરાકાર, નિરાકાર નિરાકાર, આકાર ઓર નિરાકાર,
ऐसा निरिकल तत्व नो भाषण थाय छे હોય નિર્વિકલ્પ છે વેદન નિર્વિકલ્પ વેદનમાં વિકલ્પ નથી પણ વેદન કેવું હોય જ્ઞાનમાં ખબર છે કેમ કે વેદન અનુભવ જ્ઞાન છે જો વેદન છે ઓ અનુભવ જ્ઞાન ઓર જ્ઞાન હૈ ઓ જાણકારી રૂપ ભી હૈ ઉસમે સાકારપણા હૈ તો જ્યાં વેદન હૈ વહાં જાણકારી વાળા જ્ઞાન હૈ क्या जैसे कि निर्विकल्प अनुभव हुआ चतुर्थ गुण स्थान में तो वहां वो निर्विकल्प अनुभव कैसा तो विकल्प में आने वाला ज्ञान को अच्छी तरह पता है कि मेरे को निर्विकल्प अनुभव कैसा था क्योंकि जानकारी थी वहां
तो
कही सके नहीं तो कह सकते नहीं तो कही सके क्या थी तो जानपणा रूप ज्ञान भी वहां है और वेदन रूप ज्ञान भी दोनों ज्ञान साथ में है वहां ज्ञान का दोनों पहलू है जहां जहां वेदन हो वहां जाण रूप ज्ञान तो होता ही है लेकिन जहां जहां जाण रूप ज्ञान हो वहां वेदन रूप ज्ञान हो ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे ये ग्रंथ को देखा जाना ज्ञान में तो वहां ज्ञान वेदन नहीं है उसका ग्रंथ का वेदन नहीं है क्योंकि वेदन तो ज्ञान का ज्ञान को ही होता है अखंड थियो जारे स्वानुभव मां वेदन जब आया उस वक्त जानकारी वाला ज्ञान भी खंड खंड नहीं रहा क्यों नहीं रहा कि खंड खंड ज्ञान तो इंद्रियों में खंडित होता है कि मैं यहाँ से जानू यहाँ से जानू यहाँ से जानू ऐसा मन से जानू लेकिन जब पूरा प्रदेश में अनुभव होता है वेदन आता है तो जानकारी भी पूरा प्रदेश में रहती है कैसे पता चला कि पूरा प्रदेश में अनुभव हुआ था वेदन हुआ था मेरा ज्ञान का स्वसंवेदन आनंद का वेदन पूरा प्रदेश में था सारा चैतन्य पिंड में था वो तो जब जानकारी साथ में थी तो पता चला ने जानने वाला नहीं था तो किसको पता चला ऐसा तो वो अतीन्द्रिय होता है और अखंड हो जाता है वो अखंड ज्ञान है अनुभव ज्ञान के साथ जो जानकारी वाला ज्ञान है वो अखंड ज्ञान है वो मनातीत ज्ञान है वो मन वाला ज्ञान नहीं है मनातीत ज्ञान मन से पार हो गया प्रमाण हो जाता है वहाँ अनुभव के काल में तो प्रमाण होता है पहला प्रमाण ही वहाँ होता है जब अनुभव होता है तभी प्रमाण होता है क्योंकि अवलंबन त्रिकाली का हुआ लक्ष्य त्रिकाली का हुआ और वेदन पर्याय का हुआ वेदन तो त्रिकाली में होता ही नहीं और ज्ञान तो वहां भी है वेदन है वहां भी ज्ञान है और लक्ष्य है वहां भी ज्ञान है तो युगपत ज्ञान हो गया द्रव्य पर्याय का इसलिए उसको प्रमाण ज्ञान बोला ये द्रव्य पर्याय का युगपत ज्ञान जब तो प्रमाण ज्ञान हुआ ना द्रव्य पर्याय दोनों का एक साथ अनुभव वो तो आता है चिट्ठी में तो द्रव्य पर्याय का एक साथ दोनों का अनुभव तो बात कहते हैं 120 में तो टाइम ओवर टाइम हो गया और 22 का था बाकी है वो बीच में तो गुरु का उपकार लिया है शुरू में तो 121 में तो फिर तो वृत्ति निज भाव में चलने लगी ऐसा वो करते हैं कि जहाँ निज भाव में वृत्ति चलने लगी तो अकर्ता हो जाता है और अथवा कर्ता होता है तो निर्विकल्प शुद्ध चेतना परिणाम का कर्ता भोक्ता होता है वो 122 में लिया फिर मोक्ष की परिभाषा किया मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाए वो संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ पूर्ण शुद्धता को मोक्ष कहते हैं उसको पहले वाले जो परिणाम है उसको पंथ कहते हैं, मार्ग कहते हैं। यहाँ से लेकर के 124, 125, 126, 127 चार गाथा में श्री गुरु का उपकार लिया है। ओहो ओहो श्री सदगुरु अपनी प्रसिद्ध गाथाएं बोलते हैं। 128 में दर्शन सटे समाय छे आठ स्थानक माई विचारता विस्तार थी संशय रहे न काय। यहाँ से उपसंहार थोड़ा चालू करते हैं 142 तक। तो ये जो करीब 12-13 गाथा है शाम को रात्रि को देंगे।
श्री महावीर।